मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं कुछ जो इस बीच की महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इन खबरों पर आऊं, मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप में से बहुतों ने बहुत से मेल मेरे पास इस आशय के आए हैं कि सर, हम आपके साथ 2022 के प्री की तैयारी करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा है उसमें कहीं ना कहीं मेरे प्रति, एकेडमी के प्रति आप लोगों के विश्वास की झलक दिखाई दे रही है, और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की इस विश्वास की रक्षा कर सकूं, और इस पर हम लोग आगे अब चलकर धीरे 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 इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और डेस्टिनेशन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए अब जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आ गया है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन खबर दुर्भाग्यजनक है। दुर्भाग्यजनक इसलिए है कि सोचिए कि केवल 116 देश लिए गए हैं और उसमें भारत 101वें स्थान पर है, और हमारी स्थिति खराब हुई है। इससे पहले हम 94th पोजीशन पर थे और अब हम आ गए हैं 101 पर, यानी कि भूखमरी की जो स्थिति है हमारे यहाँ और भी ज़्यादा खराब हुई है। हमारे जो पड़ोसी देश है, जो छोटे छोटे देश हैं, नेपाल जैसे देश, बांग्लादेश, हमसे बेहतर स्थिति में हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। हमें समझना होगा कि क्या कारण है कि इतने सब कोशिशों के बावजूद हमारी स्थिति इतनी शर्मनाक है। जी हाँ, मैं शर्मनाक ही करना चाहूँगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ बकायदे खाद्य नीति तैयार की गई है, बकायदे इसका अधिकार भी दे दिया गया है, भोजन का अधिकार एक तरीके से आप कह सकते हैं। कितने लंबे समय से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, मिड डे मील चल रही है, सरकार बकायदे बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रही है, और भी कुपोषण से निपटने के लिए कितनी सारी योजनाएँ चल रही हैं, इसके बावजूद हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने फोर्टिफाइड राइस के बारे में आप लोगों से बात की थी, अभी इसकी शुरुआत होनी है, लेकिन क्या कारण है कि हमारी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, ये सोचने का विषय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपको इसके बारे में कुछ तथ्य मिले आप उन्हें नोट करते जाएं। इन दिनों एक बहस आपको चैनल्स पर भी और अखबारों में भी पढ़ने को मिल रही होगी, वो है वीर सावरकर और महात्मा गांधी को लेकर। वीर सावरकर जी पर अभी बायोग्राफीज आई हैं, संपत जी की है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नाम उनका, और वो बहुत सराही जा रही है, बहुत सराही जा रही है। अभी खासकर हमारे इतिहास को लेकर के शशि थरूर और संपत जी के बीच में एक बहुत अच्छी डिबेट भी हुई थी, संपत जी जिन्होंने वीर सावरकर जी की बायोग्राफी अभी तैयार की है। दोस्तों, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीर सावरकर हमारे बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। इतिहासकारों का जो एक वर्ग है यह क्लेम कर रहा है, इसीलिए आप देखिए कि लगातार बीच बीच में इस तरह की बातें उठती रहती हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। अभी कई ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जैसे जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी उतना नहीं जानते, वीर सावरकर के बारे में उतना नहीं जानते, ऊधम सिंह जी के बारे में भी बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते। और अभी तो सरदार ऊधम करके फिल्म भी आई है, OTT पर रिलीज हो गई है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि संभव हो सके तो आप ये फिल्म जरूर देखें। तो वीर सावरकर जी के बारे में भी आपके पास थोड़ी जानकारी डेफिनेटली होनी ही चाहिए। एक खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है और वो ये है कि सरकार ने अभी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके अधिकारों में इजाफा कर दिया है, उनके अधिकारों को बढ़ा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये घोषणा की है, और अब इसे मैं थोड़े से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीधी सी बात है कि वो बॉर्डर पर रह रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर पर ही रहें, लेकिन फिर भी जो नाम है उसके आधार पर। तो हमारी जो सीमाएं हैं उन पर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान होते हैं, ये पंजाब में है, बंगाल में है, असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, राइट। तो बॉर्डर से होता क्या है कि बॉर्डर से देखिए कुछ तो घुसपैठिए आ जाते हैं, आतंकवादी घुसपैठिए भी आते हैं, फिर ड्रग्स की तस्करी होती है, हथियारों की भी तस्करी होती है, तो ये सब बॉर्डर से पार करके आते हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, सामान्यतया जब हमारी जो सीमा है, सीमा के अंदर हमारे अपने देश में 15 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेने का, जहां भी उनको इस तरह का संदेह होता है, उन्हें वो पकड़ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। आप यूं कह लीजिए, मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि इस तरह का अधिकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास होता है ना, ताकि इन पर नियंत्रण रखा जा सके, रोका जा सके। सरकार ने अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, और जो सीमा बढ़ाई गई है वो 3 राज्यों के बारे में है, पंजाब, बंगाल और असम। यानी कि सीमा के 50 किलोमीटर तक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो हमारे नौजवान हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा जो इस पर आपत्ति की जा रही है, देखिए, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ये तो राज्य हैं, पंजाब, बंगाल, असम राज्य हैं, उनके अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने गृह मंत्री हैं, उनकी अपनी पुलिस है। तो सीधी सी बात है कि अगर 50 किलोमीटर तक आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दे देते हैं, तो ये राज्यों का जो अपना अधिकार क्षेत्र है, उस पर केंद्र का अतिक्रमण है, और इस रूप में इसे कहा भी जा रहा है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि तस्करी, हथियारों की तस्करी है, ड्रग्स है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पकड़ी जा रही हैं, तो इनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो राज्यों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि 15 किलोमीटर के बाद अगर कोई ऐसी घटना होती है, तो सीधी सी बात है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ के राज्य की जो पुलिस है उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे हमें सूचना मिली है। अब वो राज्य सरकार उस पर एक्शन लेगी। दूसरा ये है कि अगर मिलकर के काम करना है, तो BSF के जो जवान हैं और राज्य की जो पुलिस है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। देखिए, नक्सली समस्या से जूझने में बहुत दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि नक्सली अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे, एक राज्य में वारदात किए, दूसरे राज्य में चले गए, पुलिस के बीच समन्वय नहीं है, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा होता था। जो चंबल घाटी है, जो मध्य प्रदेश का, पश्चिम मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, उसमें भी ये परेशानी होती थी जब डाकू समस्या थी, कि डाकू घटना उन्होंने मध्य प्रदेश में की और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भाग गए, समन्वय नहीं है। तो केंद्र सरकार का पॉइंट है कि इससे जो व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं, उसके कारण 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया है। और वो एक बात और भी कहती है कि ये कोई नई बात नहीं है, बाकायदे जो हमारे दूसरे राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान, वहाँ भी BSF के पास 50 किलोमीटर के क्षेत्र का अधिकार दिया हुआ है, तो इसलिए कोई नई और अनोखी बात नहीं है। तो ये कुछ तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है, और सूचना का अधिकार आपके सिलेबस में है और इस पर अक्सर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, व्यवस्था ये दी है कि कुछ जब सूचना आयुक्त के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए थे, तो उसमें एक एप्लीकेशन देने वाले ने एक जनहित याचिका दायर की, और उसमें उसने यह कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो जनहित याचिका दायर हो गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है बहुत स्पष्ट है, देखिए, कि जिसने जनहित याचिका दायर की है वह खुद प्रत्याशी था, सूचना आयुक्त बनने का प्रत्याशी था। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चूंकि आप खुद प्रत्याशी हैं सूचना आयुक्त बनने के, तो आप इस मामले में जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। मेरी समस्या स्पष्ट होगा बहुत, इसके लिए व्याख्या की भी कोई जरूरत मुझे नहीं मालूम पड़ती। दोस्तों, एक खबर और है, और वह है भूटान और चीन के बीच अभी मेमोरेंडम ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, भूटान और चीन के बीच में। खासकर भूटान और चीन, आप नक्शे में देखेंगे तो इनकी सीमा मिलती है, इनके साथ आप दोनों देशों के बीच में एक लंबा सीमा विवाद है, जैसे भारत और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है। अभी इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, 3-step road map। बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, इसका मतलब है कि वो अपने इस सीमा विवाद को तीन चरणों में बातचीत के जरिए धीरे 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 निपटाएंगे। थ्री स्टेप रोड मैप, या यूं कह लीजिए तीन चरणों का एक खाका इन्होंने तैयार किया है। देखिए, भारत का संबंध इसमें किस तरीके से है। एक स्थान है डोकलाम। 4 साल पहले चीन ने इस डोकलाम वाले क्षेत्र में सड़क बनानी शुरू की थी। भारत ने इसका जबरदस्त रूप से विरोध किया और ये जो डोकलाम है ये भूटान में आता है। तो भूटान ने उस समय भारत का समर्थन किया था और उसने कहा था कि नहीं, हम यहाँ सड़क नहीं बनाने देंगे। और ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इस स्थान पर दोनों देशों की, यानी कि भारत और चीन की जो सेनाएं थी, 76 दिन तक आमने सामने खड़ी रही। मतलब एक गंभीर स्थिति हो गई थी। तो उस समय भूटान ने सीधे सीधे भारत का पक्ष लिया था। भारत के बारे में अब चिंता की बात यह है कि किस तरह का भूटान के और चीन के बीच समझौता हो पाता है, क्योंकि भारत की सीमा वहाँ मिलती है। बस आप दिमाग में थोड़ी सी इस बात को रखें, आगे जिस तरह का डेवलपमेंट होगा उसे हम लोग देखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे मुख्य विषय के बारे में बस कुछ बातें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: शिप्रा पॉल, नीलेश चौधरी मंदसौर मध्य प्रदेश से, मोहम्मद तैयब, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से, ममता हुडा, दिव्या केसरवानी, सत्येंद्र सिंह इलाहाबाद से, रोशनी वैशाली बिहार से, अभिषेक ठाकुर बीना मध्य प्रदेश से, ज्योति भंडारे, प्रणय गणवीर नागपुर महाराष्ट्र से और अनंत चौहान, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। कल के गैप के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम लोग नए विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।